एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
आग हर दिल में हमको लगाना है।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप उसके वचन को सुनते हैं। आइए हम उससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तू हम सबों के संग हो और हमें आशीष दे, हमारे मन हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचन को समझने सके। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, कि वे तेरे वचन को सुन करके तेरा आशीष पाने सके और तेरे नज़दीक आने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे इच्छा मुताबिक बतला सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु जी उठा है, यह आज का संवाद का शीर्षक है। सप्ताह के पहले दिन की रात धीरे धीरे समाप्त होने जा रही थी। प्रातः होने से पहले की अंधेरी घड़ी का समय था। मसीह अभी भी अपने संकरे कब्र में कैद था। वह बड़ा पत्थर अपनी जगह पर स्थिर था, रोमी मोहर भी उस पर सही सलामत थी और रोमी पहरेदार पहरे पर चौकस थे। वहां पर अनदेखे पहरेदार भी थे, दुष्ट स्वर्गदूतों का झुंड वहां पर मौजूद था। यदि यह उसके वश में होता तो अंधकार का राजा अपनी सेना के साथ परमेश्वर के पुत्र को सदा सदा के लिए उस कब्र में कैद करके रख लेता, परंतु वहां पर स्वर्गीय स्वर्गदूतों का एक बड़ा समूह कब्र के चारों ओर मौजूद था। वे स्वर्गदूत जो शक्ति व सामर्थ में बहुत अधिक हैं, कब्र की रखवाली कर रहे थे और जीवन के राजकुमार का स्वागत करने का इंतजार कर रहे थे। और देखो, एक बड़ा भुंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। परमेश्वर के रक्षा कवच को धारण किए हुए यह स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। उसके आगे आगे परमेश्वर के महिमा का तेज उसको मार्ग दिखा रहा था। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हे याजकों और शासकों, तुम्हारे पहरेदारों की शक्ति कहाँ गई? वे बहादुर सैनिक जो इंसानी शक्ति से कभी नहीं डरते थे, इस समय बिना तलवार या बर्छे के गुलामों के समान जमीन पर पड़े हैं। जिस चेहरे को उन्होंने देखा वह किसी मरणहार व्यक्तित्व का नहीं था, यह परमेश्वर के परिवार के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का चेहरा था। यह वह स्वर्गदूत है जिसे लूसीफर के खाली हुए स्थान पर रखा गया था। यह स्वर्गदूत वह है जिसने बेतलहम की पहाड़ियों पर मसीह के जन्म का संदेश दिया था। उसके वहां पर पहुंचते ही धरती कांप जाती है, अंधकार की सेनाएं भाग जाती है। और जब वह उस बड़े पत्थर को लुढ़काता है तो ऐसा लगा कि स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया। पहरेदारों ने देखा कि उस पत्थर को वह तिनके के समान हटा दिया और जोर से पुकारा, परमेश्वर के पुत्र बाहर आ, तेरा पिता तुझे बुलाता है। उन्होंने यीशु को कब्र में से बाहर निकलते देखा और खाली हुई कब्र को संबोधित करते हुए सुना, पुनर्स्थान और जीवन मैं हूँ। एक महान प्रतापी और महिमामय रूप में जैसे ही वह बाहर आता है, स्वर्गदूतों का समूह श्रद्धा से सिर झुकाकर नमन करते हुए स्तुति और महिमा के गीत गाता है। एक भूचाल ने उस समय को प्रकट किया था जब मसीह ने अपने प्राण को त्यागा था। एक और भूचाल आकर उसके विजयी रूप में प्राण वापस पाने पर उसका स्वागत करता है। वह जिसने मृत्यु व कब्र को पराजित कर दिया था, एक विजयी के रूप में कब्र से बाहर आया। उस घड़ी पृथ्वी हिल गई, बिजली की कड़क चमकी और चारों ओर छा गई थी। और जब वह फिर दूसरी बार इस धरती पर आएगा तो पृथ्वी को हिला देगा। केवल पृथ्वी को नहीं पर आकाश को भी हिला देगा। पृथ्वी मचान की नाई डोलेगी, वह मतवाले की नाई डगमगाएगी और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरणस्थान और इज़राइलियों के लिए घर ठहरेगा। इसे हम पाते हैं इब्रानियों 12:2, यशायाह 24:20, 34:4, दूसरा पत्र 3:10 और ओएल 3:16 में। यीशु की मृत्यु के समय दोपहर को ही सैनिकों ने देखा था कि पृथ्वी पर अंधकार छा गया है, परंतु उसके जी उठने के समय उन्होंने स्वर्गदूतों के समूह का चमकता हुआ तेज प्रकाश को देखा, जो स्वर्ग के साथ साथ स्तुति और प्रशंसा तथा विजय के गीत गा रहे थे। तूने शैतान और अंधकार की शक्तियों को पराजित कर दिया, तूने विजय के साथ मृत्यु को निगल दिया है। मसीह कब्र में से महिमा के साथ बाहर आया और रोमी पहरेदारों ने उसे देखा, उनकी आंखें उसके जलाली चेहरे पर चमक गई थी, जिसे उन्होंने अभी हाल ही में चिढ़ाया, ठट्ठेबाजी किया, उसके मुंह पर थूका था। इस तेजोमय चेहरे को उन्होंने एक कैदी के रूप में पिलातुस की कचहरी में और फिर कांटों का ताज पहने हुए देखा। यह वह था जो पिलातुस और हेरोदेस की कचहरी में शांत चुपचाप खड़ा था, क्रूरता और अत्याचार से जिसका चेहरा बिगड़ गया था। यह वह था जिसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया था, जिस पर याजक और अधिकारी लोग संतुष्ट होकर अपने सिर हिला हिला कर कह रहे थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सका। मत्ती 27:41। यह वह था जिसे यूसुफ की नई कब्र में दफन किया गया था। स्वर्ग के आदेश से कैदियों को आजाद कर दिया गया। यदि पहाड़ पर पहाड़ चढ़कर उसकी कब्र पर बोझ डालते तो भी उसे बाहर आने से नहीं रोक सकते थे। महिमामय मुक्तिदाता और स्वर्गदूतों को देखकर रोमी पहरेदार मूर्छित होकर मुर्दों के समान गिर पड़े थे, और जब स्वर्गीय झुंड उनकी आंखों से ओझल हो गया तब वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जितनी जल्दी से उनके कांपते पैर उठ सकते थे वे बाग के फाटक की ओर भागे, शराबियों की तरह लड़खड़ाते हुए नगर की ओर शीघ्रता से गए, और जो भी रास्ते में उनसे मिला उससे यह आश्चर्यजनक समाचार को बताया। वे लोग पिलातुस के महल की ओर जा रहे थे, परंतु उनकी बातें यहूदी अधिकारियों तक पहले ही पहुंच गई, और महायाजक तथा शासक लोगों ने खबर भेजा कि पहले वे लोग उनके पास आए। उन पहरेदारों ने एक चकित कर देने वाली सूचना उन्हें दी। वे डर से कांप रहे थे तथा उनके चेहरे उतरे हुए थे। उन्होंने मसीह के जी उठने की गवाही दी। सिपाहियों ने जैसा और जो कुछ अपनी आंखों से देखा था सही सही उनसे बता दिया। उनके पास समय नहीं था कि सच बोलने के अलावा और कुछ सोचते और फिर बताते। बड़ी ही घबराहट के साथ उन्होंने कहा, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था वह परमेश्वर का पुत्र था। हमने एक स्वर्गदूत को उसके लिए कहते सुना था कि वह स्वर्ग का प्रतापी और महिमा का राजा था। याजकों के चेहरे मुर्दे के समान हो गए। कैफा कुछ कहने की कोशिश किया, उसका मुंह तो हिल रहा था परंतु कोई आवाज नहीं निकल रही थी। पहरेदार सभाकक्ष से बाहर जाने ही वाले थे कि एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। अंततः कैफा ने मुंह से सब निकाले। उसने कहा, रुको, जो कुछ तुम लोगों ने वहां देखा है उसे किसी से मत कहना। पहरेदारों को झूठी बातें कहने के लिए सलाह दिया गया कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। यहाँ पर याजक लोग अपनी सीमा को पार कर गए और उनसे झूठ बोलने को कहा। भला पहरेदार कैसे कह सकते थे कि हम सो रहे थे और चेले आकर उसे चुरा कर ले गए? यदि वे सो रहे थे तो फिर उन्हें कैसे मालूम हुआ? और यदि चेलों को मसीह की लाश चुरा लेने के दोष को साबित कर दिया गया तो क्या उनसे पहले याजक लोग दोषी नहीं हुए? और यदि पहरेदार कब्र के पास सो रहे थे तो क्या याजक लोग पिलातुस से उनकी शिकायत नहीं कर देंगे? अपने कार्य करने के समय सोते रहने के अपराध को सोचकर ही पहरेदार आतंकित हो गए थे, क्योंकि यह एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा मौत हो सकती थी। क्या वे लोग झूठी गवाही दें, लोगों को धोखा दें और अपने जीवन को दांव पर लगा दें? यदि उन्होंने पूरी रात जागकर पहरा नहीं दिया होता तो कह सकते थे, चाहे वे धन प्राप्त करने के लिए झूठ भी बोले तो भी परीक्षा के सामने वे कैसे ठहरेंगे? झूठी गवाही देने से जो डर उन्हें लग रहा था तो याजकों ने वायदा किया कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वे लेते हैं, और पिलातुस भी पसंद नहीं करेगा कि जो समाचार अभी तक तुम लोगों ने दिया है उसे और दूसरों को दो। रोमी सिपाहियों ने पैसों के लिए अपने सम्मान को यहूदियों के हाथ बेच दिया था। जब वे याजकों के पास आए थे तो एक आश्चर्यजनक सच्चाई के बोझ को लिए हुए आए थे, और बाहर जाते समय धन के बोझ से लदे और जबान पर झूठी गवाही जो याजकों द्वारा सिखाई गई थी उसे लेकर गए। उसी अवधि में मसीह के जी उठने का समाचार पिलातुस के पास पहुंच चुका था। यद्यपि मसीह को मार दिए जाने की जिम्मेदारी पिलातुस पर थी, परंतु उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, जबकि उसने ना चाहते हुए और तरस खाते हुए भी मुक्तिदाता को अपराधी करार दे दिया था। उसके मन में वास्तव में अभी तक कोई पश्चाताप नहीं हुआ था। भयभीत होकर उसने अपने आप को घर के भीतर ही बंद कर लिया था और ठान लिया कि वह किसी से नहीं मिलेगा, परंतु याजकों ने उस तक पहुंचने का उपाय कर ही लिया और अपनी गढ़ी हुई कहानी उसे सुना दिया और विनती किया कि पहरेदारों की लापरवाही के अपराध को ध्यान में ना लाए। कोई निर्णय लेने से पहले उसने स्वयं पहरेदारों से पूछा। उन लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के डर से किसी भी बात को छिपाने का साहस नहीं किया और पिलातुस को सब कुछ सही सही जो वहां पर हुआ था उसे बता दिया। यद्यपि उसने इस बात को वहीं पर दबा दिया, परंतु उसी घड़ी से उसके मन की शांति जाती रही थी। जब यीशु को कब्र में रखा गया तो शैतान बहुत ही आनंदित हुआ था। उसने उम्मीद किया कि मुक्तिदाता अब फिर कभी जीवित नहीं होगा। उसने प्रभु की लाश पर दावा किया और उसकी कब्र पर पहरा लगवा दिया ताकि मसीह को कब्र में कैद करके रखे। वह बहुत ही नाराज हुआ जब उसके दूत परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखकर भाग खड़े हुए थे। जब उसने मसीह को विजयी होकर कब्र से बाहर आते देखा तो समझ गया कि अब उसके राज्य का अंत आ गया और अंततः अब उसे मरना होगा। मसीह को मृत्युदंड दिलाने में याजक लोग अपने आप को शैतान का हथियार बना लिए थे। अब वे लोग पूर्ण रूप से उसके अधीन थे। उन्होंने देखा कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना असंभव है, इसलिए मसीह के विरुद्ध लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। जब उन्होंने सुना कि वह जी उठा है तब वे लोगों के क्रोध से डर गए। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका जीवन खतरे में है। उनके पास केवल एक यही आशा थी कि किसी भी तरह से यह साबित कर दिया जाए कि उसके जी उठने की खबर झूठी है। उन्होंने पहरेदारों को रिश्वत दिया और पिलातुस को भी चुप करा दिया। उन लोगों ने अपने झूठे समाचार को पास और दूर चारों ओर फैला दिया, परंतु ऐसे भी गवाह थे जिन्हें वे चुप नहीं करा सके थे। मसीह के जी उठने की खबर को पहरेदारों से बहुतों ने सुन लिया था, और बहुत से वे मुर्दे जो मसीह के साथ जीवित किए गए थे बहुतों को दिखाई दिए, और उन्होंने घोषित किया कि प्रभु जी उठा है। और जिन लोगों ने इन जीवित हुए व्यक्तियों को देखा था वे याजकों के पास खबर पहुंचाए और अपनी गवाही दिए थे। याजक लोग लगातार भयभीत रहने लगे कि कहीं सड़क पर चलते या अपने घरों के भीतर ही कहीं मसीह का आमना सामना ना हो जाए। उन्होंने महसूस किया कि अब वे सुरक्षित नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध दरवाजे और शिक्षे उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। चाहे रात हो या दिन हो, सारे समय उनकी आंखों के सामने उस न्याय कक्ष का वह दृश्य आ जाता था जब उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, मत्ती 27:25। उनके दिमाग से वह दृश्य हटने का नाम ही नहीं लेता था। अब उन्हें कभी नींद नहीं आएगी। जब उस शक्तिशाली स्वर्गदूत का शब्द मसीह की कब्र के पास यह कहते हुए सुनाई दिया था कि तेरा पिता तुझे बुला रहा है, तो मुक्तिदाता अपने प्राण को लेकर जीवित होकर कब्र से बाहर आ गया था। अब उसके कहे हुए वचन प्रमाणित हो गए थे कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। जिस भविष्यवाणी को याजकों और अधिकारियों से उसने कहा था वह अब पूरी हो गई थी। इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 10:17-18 और 2:19। यूसुफ की खुली कब्र से मसीह ने विजय स्वर में घोषित किया, जीवन और पुनर्स्थान मैं हूँ। इन वचनों को केवल ईश्वरीय शक्ति ही कह सकती थी। सृष्टि किया हुआ प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की इच्छा और शक्ति द्वारा जीवित रहता है और परमेश्वर से जीवन प्राप्त करने पर आश्रित है। जितने भी मसीह में सो गए हैं उनमें से पहला फल होने के लिए मसीह मरे हुओं में से जी उठा था। उसका पुनर्स्थान उन सभी धर्मियों के जी उठने का एक प्रतीक और वायदा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:14 यह कहता है, जब मसीह जी उठा तो बहुत से कैदियों को भी कब्रों में से अपने साथ ले आया। अपनी सेवकाई के समय में भी यीशु ने मुर्दों को जीवित कर दिया था, परंतु वे लोग जो मसीह के जी उठने के समय जिलाए गए थे उन्हें अनंत जीवन प्रदान किया गया था। वे लोग कब्र और मृत्यु पर विजय पा लेने के विजय चिन्ह के रूप में उनके साथ स्वर्ग को गए थे। मसीह ने कहा, ये लोग शैतान के बंधन से मुक्त हैं, मैंने उन्हें छुड़ा लिया है। विश्वासियों के लिए मसीह पुनर्स्थान और जीवन है। उसमें स्वयं का अपना जीवन है और जिसे चाहे उसे देकर जीवित करेगा। उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अमरता का जीवन दे। मनुष्य में होकर जिस जीवन को उसने दे दिया था उसे वह फिर से वापस लेता है और मनुष्यों को देता है। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। विश्वासियों के लिए मृत्यु एक छोटी सी बात है। मसीह इसे कुछ क्षणों की बात बताता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यूहन्ना 8:51-52, कुलुसियों 3:4। उद्धारकर्ता के जीवित होने के साथ कुछ कब्रें खुली थी, परंतु उसके दूसरे आगमन के समय सभी बहुमूल्य मुर्दे उसकी आवाज को सुनेंगे और महिमामय अनंत जीवन के लिए बाहर निकल आएंगे। यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह कब्र से जी उठा और वह हमारा जीवन दाता है। जो कोई उसमें विश्वास करते हैं, यदि वे लोग सो भी जाए मर भी जाए, वे लोग उसके आवाज को फिर सुन करके फिर जीवित उठेंगे। यीशु मसीह कब्र से जी उठ करके स्वर्ग चला गया है। हमारे लिए वह पिता के पास प्रार्थना कर रहा है कि हम अपने जीवन को बदले, पश्चाताप करें और उसके रास्ता में चले, उसको अपनाएं और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। वह हमें लेने के लिए आ रहा है। दूसरी बार जब वह आएगा, जितने कोई विश्वास में मरे हैं, जो लोग उसमें विश्वास करके मरे हैं, वह लोग उसके आवाज़ को सुन करके जी उठेंगे और हम जो उसमें विश्वास करते हैं उसके साथ पल भर में बदल दिए जाएंगे और उसके साथ जाएंगे। यही आशा हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। इस विश्वास और आशा में चलिए हम लोग जिए और आगे बढ़े और अपना जीवन को उसके इच्छा मुताबिक चलाए जिससे उसे प्रसन्न हो। परमेश्वर पिता आप सबों को और मुझे हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के समीप आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस संवाद के लिए पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे तुमने दिया, वो हमारे लिए मरा फिर जी उठा और अभी हमारे लिए जीवित है और स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है पिता, कि हमारे लिए वह जगह तैयार करे और हमारे जीवन को भी परिवर्तन करे और तैयार करे। इसलिए हम समर्पित होते हैं, हमारे मेरे हर एक श्रोताओं के लिए प्रार्थना मैं करता हूँ पिता, कि उनके मनों को भी छुओ, कि वे तेरे वचनों को ग्रहण करें और तुझे अपनाए पिता, ताकि तू प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे आत्मा से छू करके हमारे जीवन को बदल दे, परिवर्तन कर दे और तेरे समान बना, जो कि शुद्ध और पवित्र हो और हम एक निष्कलंक जीवन बिताए पिता, और तेरे आने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के लिए तैयार रहें। हमें इसके लिए मदद कर और आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।